वसुधा को होश आ गया था, लेकिन वो अजीब बर्ताव कर रही थी। वो इशिका को अंजलि कहकर बुला रही थी। अंजलि कोई और नहीं, अभिमन्यु की माँ का नाम था, जिसे सुनकर वे दोनों चौंक गए थे। अभिमन्यु ने अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वसुधा से पूछा, तो उन्होंने अभिमन्यु को ये कहकर डांटा कि वो अपनी माँ को दादी कहकर ना बुलाए। अभिमन्यु ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली थीं। फिर वसुधा ने इशिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, अंजलि, तुम्हारे लिए ज्यादा देर तक खड़े रहना सही नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें लड़का हो या लड़की, मैं उसे उम्र भर प्यार करूंगी। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। हालांकि दादी उसे पहचान नहीं पा रही थी, फिर भी वो उसकी फिक्र कर रही थी। इसी बीच प्रशांत वहां अंदर आया और उसने वसुधा की बातें सुनी तो वो बोला, माँ, आपको मैं तो याद ही हूं ना। नकुल उसके साथ था। उसने कहा, क्यों नहीं डैड, आप उनके इकलौते बेटे हैं, वो आपको कैसे भूल सकती हैं। अभिमन्यु को इस वजह से प्यार करती है क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। ये प्यार कम, दया ज्यादा नजर आता है। उसकी बात सुनकर प्रशांत धीरे से मुस्कुराया। वसुधा की याददाश्त पिछले सालों में काफी कमजोर होती जा रही थी और ऐसे में उसे अभिमन्यु के अलावा कोई ठीक से याद नहीं रहता था। प्रशांत गर्व भरी मुस्कुराहट के साथ आगे आया और वसुधा से बोला, माँ, अब आप कैसी हैं। वसुधा ने उसे देखकर मुंह बनाकर कहा, अभिमन्यु के दादाजी, आपकी मौत तो काफी कम उम्र में हो गई थी, फिर आप इतने बूढ़े कैसे हो सकते हैं। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, प्रशांत ने जल्दी से कहा। पागल हो गए हो तुम, मेरा बेटा ये पास में बैठा है, देखो ये दिखने में कितना सुंदर है, और तुम तो दिखने में ही एक घटिया चालबाज इंसान नजर आ रहे हो। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि अभी किसी का मर्डर कर दोगे, वसुधा ने काफी बेरुखी से कहा। उन सब ने महसूस किया कि वसुधा की हालत अब भी घटती जा रही है। दवाइयां उनके लिए बहुत जरूरी हो गई थीं। इशिका ने अपना मोबाइल निकाला तो सामने से एक मैसेज आया हुआ था, डॉक्टर अनामिका, आपके कहने पर हम दवाइयां वहां पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। इशिका ने राहत की सांस ली। उसने मैसेज करके रिक्वेस्ट किया था कि वसुधा के लिए दवाइयां राजवंश हाउस तक पहुंचाई जाएं। उसकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया गया था। हालांकि इशिका हॉस्पिटल के किसी भी रूल को तोड़ने के सख्त खिलाफ थी, लेकिन वसुधा की हालत के चलते उसने काफी पोलाइट वे में मेल किया था। वसुधा के इस तरह इग्नोर करने पर प्रशांत ने मायूस होकर कहा, अब तो माँ मुझे पूरी तरह भूल चुकी है, क्या वो कभी ठीक हो पाएंगी। भले ही माँ बेटे में बनती ना हो, पर प्रशांत उन्हें बहुत प्यार मानता था और उनकी हर बात भी मानता था। नायरा आगे आई और उसने प्रशांत को काफी प्यार से कहा, दादू, आप बेवजह उदास हो रहे हैं, बड़ी दादी बीमार है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, दवाइयां देने के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। क्या सच में उसकी दवाइयां इतनी असरदार हैं, प्रशांत ने हैरानी जताते हुए पूछा। नायरा जवाब में बोली, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर अनामिका ने अब तक अपनी रिसर्च के आधार पर 7 दवाइयां बनाई हैं, वे सभी काफी इफेक्टिव रही हैं। कहा जा रहा है इस मेडिसिन को बनाने के लिए उन्होंने खास रिसर्च की थी। बात करते हुए नायरा के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन साउंड आया। उसे देखते ही वो खुश होकर बोली, मैंने कहा था ना, मैं बड़ी दादी के लिए दवाइयां घर पर मंगवा दूंगी, वे लोग बाहर खड़े हैं, मैं बस मेडिसिन लेकर आती हूँ। नायरा जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रशांत ने कहा, नक्श, इशिका और अभिमन्यु, तुम्हें नायरा के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वो माँ के लिए इतना सब कुछ कर रही है, हमें उसका एहसान मानना चाहिए। इशिका ने जवाब में सख्त आवाज में कहा, इसमें एहसान मानने जैसा कुछ नहीं है, आखिर दादी नायरा की भी कुछ ना कुछ लगती है। इशिका के इस तरह बात करने पर प्रशांत ने गुस्से में कहा, तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो, यहाँ घर के बड़े तुम्हें कुछ समझा रहे हैं और तुम उल्टा उन पर सवाल उठा रही हो, शायद इसे ये लगता है डैड कि आप नायरा का कुछ ज्यादा ही पक्ष ले रहे हैं, नकुल ने कहा। वो बातों ही बातों में प्रशांत को भड़का रहा था। प्रशांत ने काफी रूखे तरीके से कहा, हाँ ले रहा हूँ मैं उसका पक्ष, क्योंकि वो मेरी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आ रही है, अगर तुम उसकी जगह ये काम करती तो मैं तुमसे भी इतने ही अच्छे तरीके से बात करता, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हारी उसकी तरह ऊंची जान पहचान नहीं है। और किसने कहा कि मैं दादी के लिए दवाइयां नहीं ला सकती हूँ, इशिका हल्के गुस्से में बोली। इशिका की बात सुनकर एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए थे, तो वहीं नायरा इस वक्त मेन गेट पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर जिंदल, इधर साइड आना है। सामने एक 32 साल का आदमी खड़ा था जिसने डॉक्टर का कोट पहना हुआ था, वो वंश जिंदल था। अंदर आने से पहले उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, घर काफी शानदार था कि वो उसे देखे बिना रह नहीं सका। नायरा वंश के साथ अंदर पहुंची, तभी वंश की नजर इशिका से जा टकराई। वो उसे जानी पहचानी से लगती थी, उसने एक बार डॉक्टर अनामिका को फोटो में देखा था, वो भी क्लियर नहीं थी, उसे इशिका की शख्सियत काफी हद तक डॉक्टर अनामिका जैसी लगी। वहीं इशिका भी वंश की तरफ देख रही थी, आज से पहले उसने उसे नहीं देखा था। रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीन का नाम रेहान स्मिथ था, उन्हीं की देखरेख में दवाइयां प्रोवाइड की जाती थी। फिर वो अनजान वंश जिंदल वहां क्या सोच कर आया था, इशिका उसके बारे में सोच रही थी, तभी नायरा ने उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, दादाजी ये मिस्टर वंश जिंदल हैं, ये मेरे बॉयफ्रेंड कर्व जिंदल का कजिन है, इस वक्त ये इंस्टीट्यूट में काम करता है। नायरा के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कुराहट थी। फिर इशिका को नीचा दिखाने के लिए उसने इशिका से कहा, आपने कहा था कि अपने दादी के लिए स्लॉट हासिल कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ जगह हासिल करना इतना आसान नहीं है। आप नहीं जानते पर केशव सिंघानिया जैसे इंसान ने किसी के लिए जगह के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्हें तक मना कर दिया गया था। वहाँ पैसों के दम पर सिलेक्शन नहीं होता है, उसका साथ देते हुए वंश ने कहा। एक्चुअली डॉक्टर अनामिका की बनाई हुई दवाइयाँ काफी रेयर और महंगी हैं, सिर्फ 50 लोगों को जगह मिली है, उनको भी डॉक्टर अनामिका खुद चुनने वाली है। नायरा मेरी होने वाली भाभी है तो उसके लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ। हर कोई नायरा और वंश को थैंक यू कहने लगा। अभिमन्यु और इशिका बिल्कुल शांत थे। इशिका को मन ही मन हंसी आ रही थी। उसने एक नजर उस बॉक्स की तरफ देखा जिसके अंदर वंश दवाइयां लेकर आया था। सबसे बात करने के बाद वंश ने कहा, मैंने आपको बताया था ना कि डॉक्टर अनामिका की दवाइयां काफी इफेक्टिव हैं, तो क्यों ना हम आज उसका पहला डोज देकर देखते हैं। किसी को इस बात से एतराज नहीं था। उसने इंजेक्शन में दवाई डाली और वसुधा के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था। वहीं इशिका उसको शक भरी निगाहों से देख रही थी क्योंकि उसकी लाई दवाइयां असली थी। तो क्या इन सब में रिसर्च इंस्टीट्यूट उसके साथ धोखेबाजी कर रहा था? दवाई इंजेक्ट करने के कुछ ही देर में वसुधा को नींद आने लगी थी। सभी घबरा गए थे तो वंश ने कहा, चिंता मत कीजिए, डॉक्टर अनामिका की दवाई कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि पेशेंट को नींद आने लगती है और वो खुद को रिकवर करने लगता है। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मिस्टर जिंदल, हमें आप पर पूरा यकीन है। फिर उसने वंश की तरफ इशारा करते हुए कहा, दादी को रेस्ट की जरूरत है तो मुझे नहीं लगता कि इस कमरे में इतने लोगों का होना सही रहेगा। नायरा बहुत पहले से वहां उन सबको हटाने की प्लानिंग कर रही थी। वंश ने उसके इशारे को समझा और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि इस घर में मेरे, नायरा और मिसेस राजवंश के अलावा और कोई ना रहे। हाँ, उनकी केयरटेकर रह सकती है, बाकी लोगों का कोई काम नहीं है। इशिका नायरा की चालाकी को समझ रही थी। उसने जल्दी से कहा, मैं भी यहीं रुकती हूँ और मिस्टर जिंदल की डेटा रखने में मदद करती हूँ।
इशिका के वहाँ रुकने की बात सुनकर नायरा हड़बड़ा गई थी। उसने जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं, हॉस्पिटल का पूरा डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, तुम क्या इन्हें मुसीबत में डालना चाहती हो? प्रशांत को तो जैसे मौका मिल गया था इशिका पर बिफरने का। उसने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पैकिंग कर लो, ऐसा करो तुम और अभिमन्यु आज ही मैनविला में सेटल हो जाओ। इशिका वहीं पर खड़ी थी तो नकुल ने प्रशांत को उकसाने के लिए कहा, तुम क्या हमारी दादी को मार डालना चाहती हो? यही तुम्हारी और अभिमन्यु की प्लानिंग है ना, ताकि दादी के मरने के बाद सारे शहर अभिमन्यु के नाम चले जाएं। ऐसा लगता था जैसे उस घर के लोगों को शेयर्स की लड़ाई करने का मौका चाहिए होता था। अभिमन्यु ने शांति से इशिका का हाथ पकड़कर कहा, चलो बाहर चलते हैं। इशिका को अभिमन्यु पर हैरानी हुई क्योंकि ऐसी हालत में वसुधा को नायरा जैसी लड़की के साथ छोड़ रहा था जो किसी भी पल उसका फायदा उठा सकती थी। इशिका बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन अभिमन्यु ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और बाहर लेकर आ गया था। पृथ्वी उनका इंतजार करते हुए बाहर ही खड़ा था। इशिका और अभिमन्यु को देखते ही वो उनके पास चला आया। बाहर आते ही इशिका ने अभिमन्यु से कहा, अब मुझे बताओ तुम्हारा प्लान क्या है, तुम इस तरह उन लोगों के पास दादी को नहीं छोड़ सकते हो। इशिका को इस वक्त अभिमन्यु पर भी गुस्सा आ रहा था। उसी वक्त राजवंश विला के बाहर एक बड़ी सी ब्लैक गाड़ी आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग के लिए गाड़ी के पास गया तो अरमान ने शीशा नीचे करके कहा, अंदर जाकर बोल दो कि मिस्टर केशव सिंघानिया यहाँ आए हैं। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से अंदर जाने लगा। इशिका को अभी भी अभिमन्यु के जवाब का इंतजार था। वो खोई हुई निगाहों से घर की तरफ देख रही थी जहां उसे अकेला छोड़ दिया गया था। अभिमन्यु को चुप देखकर इशिका ने वापस पूछा, क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? हाँ, मुझे उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, अभिमन्यु ने हल्का मुस्कुराकर बेपरवाही से कहा। इशिका हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी तो अभिमन्यु ने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, वो दादी को कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हें देख नहीं रहा वो लड़की शेयर्स पाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है? दादी जब तक ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक साइन नहीं करेंगी, इसलिए वो दादी को जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगी और उन्हें ठीक करके रहेंगी। इशिका को अब सब समझ आ गया था। थोड़ी देर पहले नकुल ने भी बातों ही बातों में कहा था, अगर वसुधा की मौत हो जाती है तो ऐसी हालत में उनके हिस्से के सारे शेयर्स अभिमन्यु के नाम चले जाएंगे। इशिका ने हाँ में सिर हिलाया। अभिमन्यु ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर कहा, अंदर जो आदमी वंश जिंदल आया है मैंने उसकी भी जांच करवा ली थी, वो दिल्ली के रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता है और जो दवाइयों लेकर आया है वो भी असली हैं। अगर उसकी दवाइयों से दादी ठीक हो रही हैं तो थोड़े ताने सुनने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी मुझे इनकी ऐसी बातें सुनने की आदत है लेकिन हमें इतना सब कुछ सुनने की कोई जरूरत नहीं है, इशिका ने जवाब दिया। पृथ्वी ने आह भरते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने डॉक्टर अनामिका से कॉन्टैक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता है। फिर हमने इंस्टीट्यूट के डीन मिस्टर रेहान स्मिथ से कॉन्टैक्ट किया लेकिन वो किसी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता था, सब कुछ उनकी प्रोसेस के हिसाब से ही होगा। हमने उन पर दबाव बनाने के कई तरीके अपनाए थे पर कोई फायदा नहीं हुआ। बोलते हुए पृथ्वी की नज़र अभिमन्यु पर पड़ी जिसने उसे चुप रहने का इशारा किया तो पृथ्वी ने आगे कुछ नहीं बताया। दादी को ठीक करने के लिए अभिमन्यु किसी भी हद तक जा सकता था, इसलिए उसने एक बार रेहान स्मिथ को किडनैप करने का प्लान भी बनाया था ताकि डॉक्टर अनामिका की इन्फॉर्मेशन निकाल सके। कहीं बातों ही बातों में पृथ्वी इशिका को ये सब ना बता दे, ये सोचकर अभिमन्यु ने उसे चुप रहने को कहा। इशिका ने रुककर पृथ्वी से पूछा, सब कुछ प्रोसेस के हिसाब से ही हो रहा है तो फिर मिस्टर जिंदल वो दवाइयाँ कहाँ से लेकर आए हैं? मुझे लगता है उन्होंने उन दवाइयों को चुराया है, पृथ्वी ने जवाब दिया। इशिका को अब सब समझ आ गया था, उसने दवाइयाँ बेचने से इनकार कर दिया था तो कुछ लोगों ने अपनी पहचान के दम पर गलत तरीके से दवाइयाँ बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। तभी कल कॉल पर उसे इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए फोर्स किया गया है। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि वो दादी के ठीक हो जाने के बाद हमें अंदर नहीं आने देंगे और उनसे साइन करवाने की कोशिश करेंगे? मुझे शेयर्स की परवाह नहीं है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर हल्का मुस्कुराकर बोला, अभी तुम दादी को जानती नहीं हो, उन्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। इशिका को बस दादी की फिक्र हो रही थी, हालांकि वो जानती थी कि वसुधा को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। पहले भी वो दो बार उसके घर पहुंच गई थी, वो भी बिना किसी की मदद के। इशिका के चेहरे पर परेशानी देखकर अभिमन्यु ने अपना आईपैड निकाला और उसकी स्क्रीन ऑन करके इशिका को दिखाते हुए कहा, जब मुझे पता चला कि नकुल अपनी बेटी को यहाँ लेकर आ रहा है तो मैं समझ गया था कि वो हमें वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही कैमरा लगवा दिए थे, अगर कुछ ऐसा वैसा होगा तो हमें पता चल जाएगा। इशिका और अभिमन्यु बात कर रहे थे तभी उन्होंने कमरे में कुछ हलचल देखी। वसुधा ने अपनी आंखें खोली थी। इशिका और अभिमन्यु ने एक दूसरे की तरफ देखा, वे अंदर नहीं जा सकते थे लेकिन हाँ, उस कैमरे के जरिए वे उन्हें देख सुन सकते थे। इशिका की दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि नायरा जैसी चालाक लड़की बस एक मौका ढूंढ रही थी वसुधा को अपने जाल में फंसाने का।